मौजू तो वही चल रहा है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि यहूद किस तरह, बनी इसराइल किस तरह शरारतें करते थे, क्या उनका उनका बिहेवियर क्या था, उन्होंने क्या क्या किया, और नबी अलैहिस्सलाम के वक्त में भी क्या करते थे। तो हमें क्यों बताया जा रहा है, सवाल ये है, हम क्या करें अगर वो ये करते थे, तो पुराने लोग हो गए, वॉट डू वी हैव टू डू विद इट। ये हमसे सवाल है ना कि हम ये पढ़ रहे हैं, तो बाज दफा जो रीडर होता है वो इसको इररेलेवेंट समझता है अपने लिए कि व्हाट डू आई केयर अगर बनी इसराइल ऐसे करते थे। तो मैंने जैसे कि आपको पहले बता दिया था कि चूंकि बनी इसराइल पिछली उम्मते मुस्लिमा थी, पिछली चोजन उम्मा थी, इसको एक दफा समझ लेना, बार बार यही चीज आएगी तो आप लोगों को फिर इंटरेस्ट कायम रहता है, अगर पता चले कि क्यों हमें ये बताया जा रहा है, कि वजह क्या है। तो जैसे हमें बताया गया, आप ब्रैकेट देखेंगे शुरू के अंदर भी, या बनी इसराइल अस्कुरु नियामत यल्लती अनामत अलैकुम, वो वाली आयत आई, फिर उसके बाद जहां पे इनका जिक्र खत्म होगा वहां पे भी मैं आपको बताऊंगी कि देखें ये दोबारा यही आयत आई, और उसके बीच में सब इनका जिक्र है। तो हमें ये समझाया जा रहा है कि देखो तुमसे पहले उन्होंने ऐसा ऐसा किया, अब देखो तुम ऐसा मत करना, क्यों, इसलिए कि वो ऐसा करने के बाद किस जगह पे पहुंचे, मग़ज़ूब अलैहिम की। और सूरह फातिहा में हम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह हमें मग़ज़ूब अलैहिम ना बनाना, उनके रास्ते पे ना चलाना। तो उनका रास्ता कैसा था, अगर पता ही नहीं कि वो क्या करते थे तो कैसे उनके रास्ते से बचेंगे। तो वो एक एक उनकी बात खोल के बताई जा रही है ताकि हम उन कामों से बचें। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हम शायद समझ ही ना पाए इतनी इंपॉर्टेंट सूरह को, जो कुरान की कुहान है, जो कुरान के जिस जो सबसे लंबी सूरह है कुरान की, जिसमें सारा खुलासा है पूरे कुरान का, उसी सूरह को हम समझ ना पाए, और जानने के बावजूद उसी ट्रैक को फॉलो करने लगे जिसको उन्होंने किया था। देखते हैं, वकालत यहूद लैसत النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود ولا شيء। वो यहूदी कहते हैं ईसाई जो है ना, ये किसी चीज पे नहीं है, इनका कोई दीन मजहब नहीं है, कोई इनकी बुनियाद नहीं है, और नसारा कहते हैं यहूदियों की कोई बुनियाद नहीं है। यानी क्या हो गए थे, इनके अंदर इतनी आपस में राइवलरी थी, इतनी आपस में दुश्मनी थी कि एक दूसरे को कहते थे ये तो कुछ है ही नहीं, असल तो हम ही हैं, वो कहते थे ये नहीं कुछ है। हदीस में आता है कि नजरान का एक वफद नसारा का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, वहां पे यहूदी भी रहते थे, तो यहूदियों को जब पता चला कि ये चले गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो वो भी पहुंच गए, और यहाँ पे आके झगड़ने लगे और एक दूसरे को कहने लगे तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो। तो ये आयत उतरी थी, फिर ये इसका शान नजूल है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वहुम यतलून अल किताब, हैरत की बात यह है कि दोनों एक ही किताब पढ़ते हैं, बनी इसराइली है ना, ये एक ही किताब है इनकी, वही तौरात है, उसी को दोनों पढ़ते हैं, इंजील है, इंजील चलो यहूदी नहीं पढ़ते, तौरात तो दोनों ही पढ़ते थे ना, इनकी शरीयत तो दोनों की सेम ही थी। हुम यतलून अल किताब, उसके बावजूद ये करते हैं, और ये 100% हमारे ऊपर भी है। लेकिन बनी इसराइल में क्या थे, बनी ये यहूदी और नसारा, समझ रहे हैं ना आप, दोनों बनी इसराइल की है ना शाखे, यहूद पहले मूसा अलैहि सलाम आए, उसके बाद ईसा अलैहि सलाम आए, ईसा अलैहि सलाम भी बनी इसराइल की तरफ ही भेजे गए, और रसूल अनिला बनी इसराइल के सूरह आल इमरान में है, मैं रसूल बना के भेजा गया हूँ बनी इसराइल के लिए। तो ये दोनों पैगंबर इसी में आए, उसी से ये यहूदी बनी और आगे ये नसरानी बन गए दूसरे। लेकिन देखो आपस में एक दूसरे को क्या कहते हैं, हालांकि अल्लाह ताला ने फरमाया ये किताब पढ़ते हैं। अगर यही चीज हम अपने ऊपर रखें, थोड़ी देर के लिए जरा रखें, हैं सभी मुसलमान एक ही कुरान पढ़ते हैं, एक ही खुदा को मानते हैं, एक ही रसूल को मानते हैं, फिर कहते हैं फां ये फिरके वाले तो कुछ नहीं है, असल तो हम हैं, वो कहते हैं ये काफिर है, असल तो हम हैं। हर एक ने अपनी अपनी दलाइल बना रखे हैं। हैरत हुई पिछले दिनों मेरे इल्म में आया एक मौजू हदीस यानी मौजूआत में से वो थी, यानी घड़ी भी हदीस फैब्रिकेटेड, तो उसको बयान किया जाता है। और मैं नाम नहीं लूंगी, मगर उसमें कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद मेरी उम्मत में ये फलां एक बंदा आएगा, वो हक पे होगा, और एक फलां आएगा वो बहुत ही बातिल होगा, और उसके अंदर इमामों के नाम थे दो फिरकों के। अंदाजा कर सकते हैं आप कैसी कैसी चीजें बनाई हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके हदीसें घड़ी हुई हैं कि देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया था हमारे इमाम के बारे में, फरमाया कि वो मेरी उम्मत में आएगा ये हक पे होगा, और ये फलां मेरी उम्मत में आएगा तो ये बातिल पे होगा। यानी इस हद तक चले गए। और एक दूसरे को काफिर कहना तो बहुत ही आसान है, फलां काफिर उसके पीछे पड़ गए, उसको कह दिया काफिर, वो ऐसे, वो मुशरिक, वो दीन से निकल गया, वो मुर्तद, वो फलां, कितना आसान है। तो वो भी यही कहते थे, उन्होंने भी यही किया, और अल्लाह ताला ने फरमाया वहुम यतलून अल किताब, यानी किताब वालों से तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो ये काम करें। हम भी कहीं ऐसे काम तो नहीं करते कि लोग कहें वहुम यतलून अल किताब, ये तो कुरान के पढ़ने वाली हैं और देखो जरा इनके काम, यही कहा जा रहा है ना वहुम यतलून अल किताब, अरे तो वो हैं जो किताब पढ़ते हैं। इसका मतलब है किताब वालों से बेहतर एटीट्यूड, बेहतर समझ, बेहतर अमल की एक्सपेक्टेशन, उनका लेवल वो नहीं होना चाहिए जो दूसरों का है जो किताब नहीं पढ़ते। लेकिन अफसोस है कि आगे कहा जा रहा है कदालिका कौल अल्लज़ीना ला यालमूना मिसला कौलिहिम, इसी तरह तो वो भी कहते हैं जिनके पास इल्म ही नहीं, इनकी जैसी बात कहते हैं, यानी इल्म वाले और बेइल्म बराबर हो गए। वो भी यही कहते हैं कि हम ही जाएंगे बस जन्नत में, वो भी कहते हैं हम ही सही हैं, ना कोई दलील ना कोई कुछ, ना उनके पास है ना इनके पास है। तो ये जो इल्म के बगैर है, यानी मुशरिकीन मक्का भी यही कहते थे, यही यहूदो नसारा कहते थे, ये इनकी मिसल उनका भी कौल है। तो अगर किताब को पढ़ने वाले उसी जहालत की बातें करें जो किताब ना पढ़ने वाले करते हैं, तो क्या फायदा उनका किताब पढ़ने का, अगर उनका अमल भी वही है जो दूसरों का है, तो क्या कर रहे हैं वो पढ़ के। अगर उनके रवैये सेम है, मामलात सेम है, तो क्या लिया हमने, क्या हासिल है इसका पढ़ने का। यही तो यहाँ कहा जा रहा है कि उनको देखो यहूदो नसारा, वो तो किताब पढ़ने वाले हैं लेकिन वो वही काम कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं जो ला यालमून, जिनके पास इल्म नहीं है। इसका मतलब है कि इल्म इंसान के अंदर को चेंज करता है, और अगर नहीं चेंज कर रहा तो इसका मतलब बराबर हो गए इल्म वाले और बेइल्म, जा रहे फिर एक ही उसके ऊपर आ गए लेवल पे। इल्म की तो लाजमी ये चीज होनी चाहिए ना कि वो आपकी दिल की दुनिया बदल दे, और अगर तिलावतें हो रही हैं दिन रात लेकिन अंदर बदल ही नहीं रहा, तो वो तो कोई इल्म नहीं है। फल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फीमा कानू फीही यख्तलिफून, तो ये नहीं कहा गया आपस में और लड़ो, आपस के अंदर दस्तों गिरेबां हो, एक दूसरे के ऊपर कुफर के फतवे करो, अल्लाह फैसला कर देगा क़ियामत के दिन फीमा कानू फी यख्तलिफून, जिसमें वो इख्तलाफ करते हैं। यानी बताना जरूर चाहिए कि ये चीज हक है और ये बातिल है, लेकिन उसके बाद क्या है, ये मामलात ऐसे होते हैं कम ही होता है कि दुनिया में कुछ समझ जाए। अक्सर लोग जो जिस उसके ऊपर होते हैं वो सुनना ही नहीं पसंद करते कि कहा क्या जा रहा है, तो वो नहीं अपने आप को चेंज करते। अल्लाह ताला ने फरमाया तो फिर इन चीजों का फैसला कयामत के दिन तो हो ही जाएगा, पता चल जाएगा कौन सीधे पे था कौन नहीं था। आज भी आप किसी को समझाने की कोशिश करें, कितना ही सर खपा लें, सर फोड़ लें कि भाई ये बिदत है, ये सही नहीं है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं सुनते, क्या करेंगे। फिर अल्लाह ताला फैसला करेगा कयामत के दिन। वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह अन युज़कर फीहा इस्मुहु, और उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है, यानी इसका मतलब जालिमों के भी लेवल्स हैं। एक बहुत ही बड़ा जालिम जिसके बारे में कहा गया, उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है, यानी ये तो सबसे ही बड़ा जालिम है। आपके जेन में क्या आता है, सबसे बड़ा जालिम किसको कहते होंगे, क्या सोचते हैं आप? अने जालिम तो वो होता है जो कि लोगों को मारता है, पीटता है, फसाद करता है। यहाँ पे सबसे बड़ा जालिम पता है किसको कहा गया, जो मना करे अल्लाह की मसाजिद से, आई यूज करा फी हसमू के वहां पे अल्लाह का नाम लिया जाए, और साफ ही खराबी और उसकी वीरानी की कोशिश करे, ये है जो सबसे बड़ा जालिम है। अगर उनके कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वहां पर ये इस आयत के बारे में आता है कि दो दो यानी ग्रोहों की तरफ इशारा मिलता है, दो कॉल मिलते हैं, यानी ये कह सकते हैं, एक ये कि इससे मुराद नसारा है, क्योंकि नसारा ने भी जब बैतुल मकदस था तो उसके अंदर एक काफिर बादशाह था, बुख्त नसर, मजूसी था वो, और इन्होंने यहूदियों की दुश्मनी में उसका साथ दिया था और बैतुल मकदस की बर्बादी कराई थी, इसके ऊपर चढ़ाई हुई थी, इसकी ईंट से ईंट बजा दी थी, तोड़ फोड़ के रख दिया था। तो ये तो खुद किताब वाले थे, तो जाके उनके साथ बैठ गए और उनके साथ मिलके और तब ये इबादत गाह को तबाह बर्बाद कर दिया। दूसरी तरफ दूसरा कौल है कि इससे मुराद मुशरिकीने मक्का है, जिन्होंने क्या किया था, आपको पता है कि मुसलमानों को अल्लाह के घर से रोक दिया, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया में उम्रे के लिए गए थे, आपको दाखिल नहीं होने दिया, आपके साथियों को दाखिल नहीं होने दिया, हालांकि ये वो जगह थी जो अमन की जगह थी, यहाँ पे बाप के कातिल को कोई देख लेता तो उसको हाथ नहीं लगाता था। तुम लोग इतने बुरे हो गए, इतने बड़े जालिम हो गए कि अल्लाह के घर से लोगों को रोक रहे कि यहाँ पे नमाज ना पढ़ी जाए, इतना मुसलमानों को सताया कि उनको हिजरत करनी पड़ी, आपको पता है वहां पे नमाज नहीं पढ़ने देते थे, कोई अल्लाह का जिक्र करता था तो उसको कितना मारते पीटते थे। तो इससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह की मस्जिदों से रोके, और रोकने में क्या है, ये रोकना ही है ना कि वहां पे अल्लाह का जिक्र ना करने दिया जाए और इसकी वीरानी की कोशिश करें। तो मस्जिदें अल्लाह के घर हैं, मस्जिदों की ताजीम होती है, इनकी इज्जत है, और कोई अगर ऐसा काम करता है जिससे मस्जिद की इज्जत में फर्क आए, जब वहां पे वीरानी हो, लोग वहां पे आना पसंद ना करें, ये बहुत बड़ा जालिम है। अच्छा अब क्या होता है, अयूस करा फी हसमू, इससे कैसे रोका जाता है कि अल्लाह का जिक्र किया जाए, अल्लाह का नाम लिया जाए वहां पे, इससे कैसे रोका जाता है? इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। देखिए एक तो इसके अंदर ये चीज आ जानी कि अल्लाह के जिक्र के सिवा औरों के जिक्र होने लगे, कई बुजुर्गों के हो रहे हैं, उनके किस्से कहानियां हो रही हैं, फलां हो रहे हैं, ये अल्लाह का जिक्र छोड़ के और दूसरों के जिक्र वहां पे किए जाएं, ये दुरुस्त नहीं है। ठीक है, अल्लाह का जिक्र होना चाहिए, फिर बिदात वहां पे हो, जो चीजें नहीं है दीन के अंदर वो की जाएं, ये भी अल्लाह के जिक्र से रोकना है, क्योंकि अल्लाह का नाम वहां पे लिया जाना चाहिए। फिर आप ये भी देखें, बहुत सारे मिंबरों के ऊपर खुतबों के अंदर सियासत डिस्कस होती है, नमाज तो 2 मिनट की पढ़ाई जा रही है, खुतबे हो रहे हैं जिनके अंदर लंबी लंबी सियासत के ऊपर बातें हो रही, जबकि अल्लाह का घर सिर्फ अल्लाह का नाम लेने के लिए। इसी तरह किसी को भी ये इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो किसी को रोके वहां पे नमाज पढ़ने से, कुरान पाक की तालीम देने से, अल्लाह का जिक्र करने से। मसाजिद किस लिए है? यही काम करने के लिए। आपको पता है नबी अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर क्या था, मस्जिद नबी के अंदर ही दरसो तदरीस का सिलसिला था, मस्जिद ही के अंदर समझ लें यूनिवर्सिटी थी, उस यूनिवर्सिटी का नाम पता है आपको, सुफा की यूनिवर्सिटी, हाँ जी, वो भी एक यूनिवर्सिटी थी, और वहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मस्जिद तामीर की तो उसके बाद वहीं पे एक चबूतरा बनवाया था जिसके ऊपर एक छप्पर भी था, और वहां पे असहाबे सुफा बैठते थे, और असहाबे सुफा कौन थे, जो दूर नजदीक जगहों से लोग आए हुए थे दीन को सीखने के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीम लेने के लिए, वो वहां पे आके रहते थे, उनके लिए वो जगह थी, अब वो वहीं पे सोते जागते उठते बैठते, वहीं खाना पीना सब कुछ, और मदीना के लोग आके उनके लिए कुछ उनको खाने वाने का उनका कर देते थे इंतजाम, वो खुद भी कभी लकड़ियां जाके काटते थे दिन में और फिर उनको बेच के, और फिर अपने लिए कुछ मेहनत मजदूरी यानी इस तरह करके, और फिर वो अपना कुछ गुजारा चलाते थे, मगर ज्यादातर भूख में ही रहते थे वो,
उनके पास लिबास नहीं होते थे, मतलब सिर्फ शौक में, कि इल्म का शौक उनको इतना था, वो वहां पे रहते थे। तो मस्जिद जो थी वो तालीम की जगह थी, कुरान पाक को सीखने की जगह थी, हदीस का जिक्र करने की जगह थी। तो मस्जिदों के अंदर कुरान पाक सीखा सिखाया जाना चाहिए, मस्जिद में नमाज होनी चाहिए, वहां पे अल्लाह का जिक्र होनी चाहिए। और साफ ही खराबी हमें क्या है, यही खराबियां कि जब औरों के, जैसे मैंने कहा कि उनके जिक्र हो रहे हैं और चीजें बयान की जा रही हैं, वहां पे लोगों को रोका जा रहा है आने से, वहां पे ऐसे प्रोग्राम होना कि नहीं किए जाने दे रहे, इसी खराबी भी है कि मस्जिदों को ढा देना, उनको तबाह कर देना, उनको खत्म कर देना, या मस्जिदों से लोगों को रोकना, ना ना मस्जिद ना जाना, पता है तुम नजरों में आ जाओगी ज्यादा मस्जिद जाओगे। हाँ, बाज औरतें कहती हैं हम बच्चों को मस्जिद नहीं भेज रहे, क्यों, वहां पे तो देखे आजकल कितनी तकरीबी कार्रवाइयां हो रही हैं, मस्जिदों में बम फटते हैं, फलां होता है, तो इसलिए मस्जिद ना जाओ ज्यादा। ये क्या है, रोकना मस्जिद की वीरानी। देखिए, मस्जिदें सजावटों से आबाद नहीं होती, इंसानों से आबाद होती है। तो मस्जिदों में इंसान ही नहीं होंगे तो क्या होगा, वीरानी। जिस जगह पे कोई मस्जिद होती है, उस कम्युनिटी का काम होता है कि वो मस्जिद वीरान ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो समझ लें कि मस्जिद के साथ इतना गहरा ताल्लुक था कि आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के काम में मशगूल होते, ले जैसे ही अजान की आवाज सुनते सब छोड़ छाड़ के मस्जिद तशरीफ ले जाते। सफर से जब वापस आते थे, सबसे पहले घर नहीं आते थे, मस्जिद जाते थे, वहां पे 2 रकत नमाज पढ़ते थे, फिर घर आते, फक्र फाकी की नौबत आती मस्जिद चले जाते, खौफ होता, घबराहट होती, परेशानी होती तो मस्जिद चले जाते, कोई आंधी तूफान आता देखते कि बादल आ रहे हैं तो मस्जिद चले जाते, खसूफ और कसूफ यानी ये चांद ग्रहण सूरज ग्रहण है तो मस्जिद चले जाते। हाँ, वो पता है मरज़ुल मौत में भी सिर्फ 4-5 दिन मस्जिद में नहीं जा सके, तो तबीयत मुबारक इतनी बेचैन हो गई, 2 आदमियों को सहारा लेके मस्जिद तशरीफ लेके गए और पांव मुबारक जमीन पे घिसट रहे हैं, अगले रोज इतनी भी हिम्मत नहीं हुई तो फिर पर्दा सरका के देखा था। सोचें कि मस्जिद क्या चीज है, मस्जिद की कितनी बड़ी फजीलत है और फिर भी मस्जिदें आज वीरान है, और हम कहते हैं बड़ी दूर है मस्जिद, हालांकि ज्यादा फासले से मस्जिद आने वाले के लिए ज्यादा अजर व सवाब है, हर कदम के ऊपर अजर मिलता है। जुमे के दिन जो गुसल करता है, गुसले जनाबत वाला गुसल, और खुतबे से पहले मस्जिद में आता है और इमाम के करीब बैठता है, खुतबा खामोशी से सुनता है, तो उसको मस्जिद में आने जाने वाले हर कदम पे 1 साल के रोजों और 1 साल के कयाम का सवाब मिलता है। हम तो खैर गाड़ियों में जाते हैं, फिर भी हम कहते हैं कैसे करें, फजीलतें अगर आप इसकी सुने। और आपको पता है एक सहाबी थे, वो दूर रहते थे और वो वहां से जब आते थे तो छोटे छोटे कदम लेते थे, इतना ज्यादा देखिए ना वो शौक रहते थे, कहते हर कदम के ऊपर जब अजर मिलना है तो मैं तो छोटे छोटे कदम लूंगा, मेरे कदम ज्यादा हो जाए। और जो घर से वुजू करके मस्जिद में जाके बाजमात फर्ज नमाज अदा करता है, उसको हज के बराबर सवाब मिलता है। अबू दाऊद की ये रिवायत है, जो पिछली बताई वो तिरमिजी की रिवायत है, अगर आप ये ना कहें पता नहीं कहां से बता रही। तो देखिए, मस्जिद में रहना, मस्जिद में बैठना, मस्जिद में नमाज पढ़ना, मस्जिद की तो इतनी यानी फजीलत है कि सिर्फ बैठा हुआ ना कोई इंसान, यानी फर्ज नमाज अदा करने के बाद कोई बैठा हुआ है, बावजूद जब तक बैठा रहेगा फरिश्ते उसके लिए दुआएं मगफरत करते रहेंगे। और दीन का इल्म हासिल करने के जो मस्जिद में आने वाले को हज के बराबर सवाब मिलता है, तो मुझे बताएं कितना इसकी फजीलत है। जमीन पे मस्जिदें आसमान वालों को ऐसे नजर आती हैं जैसे जमीन वालों को सितारे नजर आते हैं, इतनी इनकी बरकत है। कयामत के दिन हशर में अल्लाह ताला के अर्श का साया उन जिन लोगों को मिलेगा, उनमें एक वो भी है जिसका दिल मस्जिद में अटका रहता है। हमारा तो ये हाल है, हाँ ठीक है, हम अपने औरतों के ऊपर तो मस्जिदों में जाने का इस तरह से जरूरत नहीं है कि वो जाएं जैसे मर्दों के ऊपर है जरूरी, मगर हमारा तो ये हाल है, हम हज उमरे के लिए भी चले जाएं तो मस्जिदों में हमारा दिल नहीं लगता, हम वहां पे ज्यादा देर बैठना नहीं चाहते, तब भी हमारी दौड़ बाजारों की तरफ होती है। देखिए, बाजार सबसे ज्यादा अल्लाह ताला को मखदूब जगह है, सबसे ज्यादा अल्लाह ताला को जो नापसंदीदा जगह है वो बाजार है, और सबसे ज्यादा अल्लाह को पसंदीदा जगह है वो मस्जिद है।
हर मस्जिद के बाहर बाजार लगे हुए, अब हमारा दिल बाजारों में ही अटका रहता है, वहीं से गुजर के आते हैं, वहीं चीजें देखाते हैं, नमाज में सारा वक्त उन्हीं का सोचते रहते हैं, नमाज पढ़ी और फिर भागे बाजार में। आम मस्जिदों का ये है, तो जो वहां पे मस्जिदें हैं उनका तो आपको पता है कितना ज्यादा आ जाए, 1 लाख नमाज के बराबर है मस्जिद हराम में, मस्जिद नबी में 1,000 नमाज के बराबर। फिर भी हमें मस्जिदों के शौक नहीं है, हम कहते तो है ना हमें औरतों को अगर दो ना तो फिर कितना अच्छा हो मर्दों के लिए मस्जिदों का, ये हम तो अपना आप दिखा देते हैं जब हम हज उमरों पे जाते हैं, उस वक्त हमें कौन रोक रहा होता है, कितना टाइम हम मस्जिदों में रहते हैं, फिर हमारा दिल अटका रहे कि आए हम होटल में जाके चैन नहीं आ रहा, हम जल्दी मस्जिद चले जाए, उस वक्त पता चल जाता है ना, और कोई रोक टोक नहीं होती, कोई और काम नहीं होता, फिर भी हमारी दौड़े बाजारों की तरफ होती है, कोई चीज रह नहीं जाती, मगर वो अजर रह जाएगा, आपकी चीजें सारी खत्म हो जानी, कितनी भी खरीदारी कर लो सब खत्म हो जाएगी, वो अजर खत्म नहीं होगा, बैठे रहो मस्जिद में चाहे आप कुछ भी नहीं कर रहे, बैठे रहो फरिश्तों की दुआएं लेते रहो, और क्या चाहिए। तो मस्जिद वो जगह है जहां की देखें फजीलत है, लेकिन इसके आदाब भी है कि वहां पे अल्लाह का जिक्र किया जाए, उसकी वीरानी की वीरानी और किस तरह होती है, जब वहां पे गंद मचाया जाए, जब आप बाथरूम में गए तो वजू ऐसा किया कि जैसे शावर लेकर आ रहे हैं, तो वजू करने को कहा, गुसल तो नहीं करने को कहा, उसके बाद साफ भी नहीं करते, हमें क्या मैनेजमेंट का काम है। जब इतनी तकलीफ होती है कि जब मस्जिद में एंटर हो और खास तौर पर रमजान में अफतारियां करके गुठलियां जमीनों पे गिरी हुई है, खाने की स्मेल सारी मुसल्ले में आ रही, मस्जिद पाक जगह देखें, अल्लाह ने आगे आप इसी में पढ़ेंगे इसी पारे में, अल्लाह ने अपने इतने बड़े पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम से क्या फरमाया, अंतहिर बैतिया, मेरे घर को साफ सुथरा रखना, पाक रखना, तवाफ करने वालों के लिए, तकाफ करने वालों के लिए, तो मस्जिदों की तो सफाई सुथराई रखना कितना जरूरी। और फिर क्या वहां पे जहां पे कहा गया प्याज ना खा के आओ, लहसुन ना खा के आओ, क्योंकि स्मेल से नमाजियों को और फरिश्तों को तकलीफ होती है, वहां पे खाने की स्मेल से, फिर वहां पे जहां पे बच्चों को बिठाया उनको कुछ खाने को दे दिया वो भी वहीं फेंक रहे, हमें क्या मैनेजमेंट साफ करे, इनका काम है साफ करना, हमारा तो नहीं। ये हमने सोचे मस्जिदों का तकद्दस रखा, जबकि अल्लाह ताला ने फरमाया उलाइक मा काना लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन, इनके लिए ये मुनासिब नहीं कि इनमें दाखिल हो मगर डरते, डरते हुए कैसे, कि ये अल्लाह का घर है, ये अल्लाह का घर है, इसकी ताजीम है, मुझसे कहीं ऐसा कोई काम ना हो जाए कि इसकी ताजीम में फर्क आए। आप किसी बादशाह के महल में जा रहे हो तो कितना आप केयरफुल होकर रहेंगे, भाई बादशाह का महल है इतनी बड़ी जगह पे मैं आई हूं, और मस्जिदों को तो हम कुछ समझते नहीं, हरम में भी बैठे मैं तो वहां पे भी गम मचाए रखे, वी डोंट केयर, वहां पे भी आवाजें ऊंची हो रही हैं, वहां पे भी झगड़े हो रहे हैं, मस्जिद का तकद्दस है कि आवाजें नीची हो वहां पे, मस्जिद का तकद्दस है कि वहां पे कोई खरीदो फरोख्त ना हो, कोई चीज बेची और खरीदी ना जाए, मस्जिद का ये भी तकद्दस है कि वहां पे गुमशुदा चीजों के ऐलान ना किए जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी ने ऐसी बात की, ऐलान किया अपनी गुमशुदा चीज का, आपने फरमाया इसको कभी ना मिले, क्योंकि ये मस्जिद जगह नहीं है अपनी गुमशुदा चीजों के ऐलान करने के लिए, हमने तो ये स्पीकर बनाए हैं कि भाई बच्चा गुम हो गया तो मस्जिद में ऐलान हो रहा है, फलां चीज गुम हो गई तो मस्जिद में कहा जा रहा है, मैंने लाउड स्पीकर क्या लगा लिया, बस ये अनाउंसमेंट की जगह बना ली उसको। तो मस्जिदें में तखरीबकारी, जो लोग वहां पे सोचें उनका कितना बड़ा गुनाह है, जो लोग वहां पे खुदकुश हमले करते हैं या वहां पे ऐसे कोई काम करते हैं जिससे कि लोग यानी जो आने वाले हैं मस्जिदों के अंदर उनको कोई नुकसान पहुंचता है, तो ऐसी चीजें करना मस्जिदों में, इस जितने भी काम है जो इसकी वीरानी की है, जो इसकी खराबी की है, इसको तो साफ सुथरा और खुशबूदार होना चाहिए मस्जिद को, कि लोग आए और उनका दिल नमाज में लगे। इसी तरह हाँ मस्जिद के आदाब में एक ये भी है कि ऐसा लिबास पहन के जाया जाए जो साफ सुथरा हो, जिससे लोगों को स्मेल ना आए, और ऐसा लिबास औरतें पहन के ना जाएं जो कहीं से सी थ्रू हो, जो टाइट हो, वो कहीं पे भी नहीं पहनना चाहिए, लेकिन मस्जिद, कम से कम मस्जिद आने के लिए तो ऐसा लिबास होना चाहिए कि जिसमें अल्लाह के घर जा रहे हो, फिर देखो अल्लाह की इबादत करने जा रहे हो, अल्लाह की नाफरमानी करते हुए जा रहे हो। खुशबुएं फूल लगा ली, अब खुशबू लगा के जाने के ऊपर तो इतना मना किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको जाके वापस ऐसा गुसल करना चाहिए जैसे जनाबत का गुसल होता है, यानी खुशबू बिल्कुल उतार दे औरत। हम खूब खूब खुशबू लगा के जाते हैं और ज्यादा ही तैयार होके जाते हैं, जरक बरक लिबास पहन के मस्जिद जा रहे हैं। मर्दों को कहा गया कि वो जीबो जीनत के साथ मस्जिद जाए, औरतें तो अपने आप को कवर करके आए। सहाबा कराम औरतों को कैसे पहचानते थे कि ऐसे ब्लैक उनके वो होते थे कि जैसे बिल्कुल स्याह पर्दों के अंदर छुपी भी जा रही। तो अगर हम ऐसा नहीं कर सकते या हमें ये नहीं पसंद है तो फिर हम ना मस्जिद जाएं। लेकिन हम अपने आप को गुनाहगार करती हैं जब हम मस्जिद ऐसे हुलियों में जाती हैं जो अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि मर्दों की जितनी दफा नजर पड़ेगी उनकी भी इबादत खराब होती है। बेहतर है फिर आप घर में ही करें। अगर आप जाते हैं वहां पे ऐसे हाल हुलिये के अंदर जाएं जैसे अल्लाह का हुक्म है, जैसे एक मुसलमान औरत को होना चाहिए, और उसके अंदर भी मर्दों और औरतों का ऐसा इख्तलात ना हो कि आपस के अंदर यानी टच होते हुए जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। ऐसी जगह होनी चाहिए कि जिसके हम जैसे जिसमें यानी आदमी औरतों का या तो बिल्कुल अलग हो एंट्रेंस, या फिर ऐसा हो कि बिल्कुल सेपरेट एक रास्ता हो उनका कि जिसके अंदर वो अलग चल रहे हैं वो अलग चल रहे हैं, और दोनों का आपस के अंदर ऐसे नहीं होकर टकराते फिर रहे हैं क्योंकि रश होता है। तो ये जगह है जिनमें कैसे जाना चाहिए, डरते हुए जाना चाहिए कि हमसे कोई ऐसी चीज ना हो जाए। लहुम फिद दुनिया खिज़्युन वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, जो अल्लाह की मस्जिदों में आने से मना करते हैं उनके लिए दुनिया में भी खिज़्य है, दुनिया में भी रुसवाई है, और आखिरत में तो बड़ा अजाब है। अल्लाह ताला दुनिया में भी उनको रुसवाई दिखाता है। फिर वलिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिब, अल्लाह ही के लिए मशरिक और मगरिब। ये आयत कब उतरी थी? जब सहाबा कराम एक दफा किसी सफर में थे तो ऐसी जगह पे उतरे कि रात अंधेरी थी, पता नहीं चल रहा था कि किबला किस तरफ है। तो लोगों ने अपनी अपनी जगह पे जिस जिस ने जिस तरफ उसको समझ आई उसने उस पर नमाज पढ़ ली और एक लाइन खींच ली। सुबह उठे तो पता चला कि किसी ने किसी तरफ पढ़ ली, किसी ने किसी तरफ, ये गलत उसकी गलत हो गई, इसकी गलत हो गई। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नमाज दोहराने का हुक्म नहीं दिया और ये आयत नाजिल हुई कि अल्लाह तो मशरिक और मगरिब में, यानी जिधर को भी आई नमा तो वल्लू फसम वजहुल्ला, तो जिधर को भी तुम रुख करोगे वो उस तरफ अल्लाह है। तो इसका मतलब है कि यानी अगर ऐसी आप किसी जगह फर्ज नमाज के लिए तो लाजिम है, क्योंकि आगे आ जाएगा जब सेकंड पारा शुरू होगा तो फर्ज नमाज के लिए लाजिम कर दिया गया कि किबले की तरफ मुंह होना चाहिए। मगर नफल नमाज के लिए अगर किबला रुख मुंह करके शुरू कर दी है और उसके बाद किसी तरफ को भी रुख हो जाता है, यानी नफल नमाज में ऐसा नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंटनी के ऊपर पढ़ते थे मसलन, आप भी गाड़ी में मसलन जा रहे हैं, आपने किबला रुख करके शुरू कर दी उसके बाद गाड़ी कहीं मुड़ती रही है, अब आपका मुंह कहीं और हो जाता है, तो उसमें फिर इंशाल्लाह आपकी नमाज हो जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंटनी पे इसी तरह होते थे और जिस तरह भी होता था आप नमाज पढ़ लेते थे। अगर फिर भी आपको नफल नमाज के अंदर यानी मस्त नहीं है, कर लेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि अब उसके बगैर आपकी नमाज नहीं होगी। इस तरह फर्ज नमाज में भी आप आजकल तो बहुत सहूलियात हैं, कंपस वगैरह होते हैं आप देख सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी आपने कहीं गलती कर दी, नहीं था आपके पास कंपस भी, नहीं अंदाजा हुआ, तो नमाज हो जाएगी क्योंकि अल्लाह ताला हर तरफ ही अल्लाह है। मगर एक बात और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है, जिन्होंने सुना हुआ ये बात वहदतुल वजूद का अकीदा, ये बहुत ही गुमराहकुन अकीदा है। और इसमें वो क्या कहते हैं कि अल्लाह तो हर चीज के अंदर, जर्रे जर्रे में अल्लाह है, इसमें अल्लाह, उसमें अल्लाह, मकान में अल्लाह, फूल में अल्लाह, पत्ते में अल्लाह, दरख्त में अल्लाह, आसमान, ये कुफर है, कुफर। तो ये इस आयत से वो लेते हैं, देखो अल्लाह ताला ने तो कहा है लिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिब, तुम जिधर भी मुंह करोगे उधर ही अल्लाह है, इसका ये मतलब नहीं। इसीलिए हदीस इतनी जरूरी है ना बात को समझने के लिए, वरना तो लोग अपने मनमाने माने बना लेते हैं। तो अल्लाह ताला कहाँ है, अपने अर्श पे मुस्तवी है। हाँ, अपनी इल्म कुदरत अपनी तमाम सिफात के इतबार से अल्लाह ताला ने हर चीज को घेरा हुआ है। इन्ना अल्लाह वासिउन अलीम, अल्लाह ताला वुसअत वाला है, उसकी एक सिफत है वुसअत है उसके अंदर और उसकी तमाम सिफात में वुसअत है और अलीम है जानने वाला है। वकाल अखज अल्लाह वलदा, और इनका ये हाल है वो अल्लाह जिसकी ये शान है उस अल्लाह के लिए बेटा ठहराते हैं या औलाद ठहराते हैं। वलादा में औलाद ही आ गई, क्योंकि यहूदी भी उजैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते थे, नसरानी जो थे वो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते थे। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, इसके बावजूद वो कि अल्लाह ताला की इतनी अजमत है, वो वासियन अलीम है, ये क्या करते हैं, ये अल्लाह ताला का बेटा या उसकी औलाद ठहराते हैं। मुशरिकीन मक्का फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे। तो अल्लाह ताला ने इसका एक जवाब दिया, सुबहानहू, पाक है वो, बल लहू मा फिस्समावात वल अर्ज़, बल्कि उसके लिए तो वो सब कुछ है, यानी वो मालिक है सब कुछ का जो आसमानों में और जो जमीन में, और कुल्लू लहू कानितून, हर एक उसका फर्मा बरदार है। देखें, जब अल्लाह की मिल्कियत है जो कुछ है आसमानों में जमीन में, तो फिर कोई चीज इसे बाहर तो है नहीं, कोई भी चीज यहाँ आसमानों में होगी या जमीन में होगी, वो उनका मालिक है। मालिक किसी चीज का कोई अगर होता है तो वो चीज उसका बेटा या बेटी तो नहीं बन जाती, वो मालिक है। मसलन है, आप कहें कि हम मालिक हैं इस घर के, हम मालिक हैं इस गाड़ी में, तो वो क्या आपका बेटा बेटी बन जाएगी? नहीं, वो अल्लाह की तो ये क्रिएशन है, मखलूक है, मखलूक तो औलाद नहीं हो सकती, अल्लाह ने इनको तखलीक किया है। तो फिर तुम कैसे कहते हो कि ये अल्लाह की औलाद है? और ये इतनी बड़ी बात है, सूरह मरियम में आयत नंबर 92 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये इतनी बड़ी बात है और इतनी बुरी बात है जो ये जुबान से निकालते हैं, कि इससे करीब है कि आसमान फट जाए और जमीन शक हो जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। हम तो बड़ा आराम से कह देते हैं, तो क्या हो गया, ये तो इतने नेक काम करते हैं, ये तो जन्नत में इनको जाना चाहिए, और उनके शिर्क का हमें कुछ नहीं होता, तो क्या हो गया, शिर्क ही सिर्फ करते हैं। पता है शिर्क कितनी बड़ी चीज है? मिसाल के तौर पे ऐसे उसके साथ मिसाल मैच तो नहीं करती, लेकिन जस्ट मिसाल किसी किसी आदमी से कहा जाए कि उसकी तेरी बीवी किसी और की भी बीवी है, कोई और भी उसको अपनी बीवी कर दे, उस आदमी को कितनी गैरत आएगी। आप समझ लें कि इस तरह अल्लाह के लिए औलाद ठहराना उसके लिए गैरत की बात है। और हदीसे कुदसी में आता है, बुखारी में है ये, कि अल्लाह ताला फरमाता है मुझे इब्ने आदम झुठलाता है, उसको ये लायक नहीं कि वो मुझे झुठलाए, वो मुझे गालियां देता है, उसको ये लायक नहीं कि वो मुझे गाली दे। और उसका गालियां देना क्या है, उसका झुठलाना तो क्या है कि मरने के बाद जिंदा कैसे होंगे, तो अल्लाह इस पे कादिर नहीं, ये अल्लाह को झुठलाना है। और उसका गाली देना क्या है कि फरमाया वो मेरी औलाद बताता है, हालांकि मैं पाक हूं और मेरी ना औलाद है और ना बीवी है, और अल्लाह इससे बुलंद है, सुबहाना, वो पाक है इन चीजों से, इसलिए को औलाद की तो तुम्हें तमन्ना हो सकती है, अल्लाह को नहीं है। औलाद तुम्हें चाहिए कि तुम्हें जो होता है कि मेरा नाम लेने वाला कोई हो, हालांकि अब तो औलाद भी नाम नहीं लेती, वालदैन का मर जाते तो औलाद भी भूल जाती है। तो ये तो इंसानों की कमजोरियां, या इंसान कहते हैं कि हम बुढ़ापे में हमारा क्या बनेगा, अल्लाह ताला तो बुढ़ापे से पाक है, मौत से पाक है, फिर तुम कैसे उसकी औलाद ठहराते हो? और इतनी प्यारी ये हदीस है ना बुखारी और मुस्लिम की, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बुरी बातें सुन के सबर में अल्लाह से ज्यादा कोई भड़के नहीं है, कि लोग उसकी औलाद ठहराते हैं और वो उनको रिस्क देता है और आफियत देता है। सुभान अल्लाह, देखे हमें कोई बुरी बात कह दे ना, कोई गाली दे दे, कोई बुरी बातें हमें कह दे, ये तो एक्सट्रीम बुरी बात है। शिर्क जो है ना, इससे ऊपर कोई गुनाह नहीं है, सबसे टॉप का सबसे बड़ा कभी गुनाह, इतना बुरा कि अल्लाह को गाली देने के बराबर ये शिर्क है। सोचिए हमें कोई थोड़ा बुरा कहता है ना, थोड़ा सा भी बुरा कह दिया, क्या हमारी कोई शान में गुस्ताखी कर दी, किसी ने कोई हमें कुछ कह दिया, कुछ पता चल गया, तो हम सारी जिंदगी से बात नहीं करना चाहते, हमें वो इतना बुरा लगता है कि बस हम उसे बदले लेने पर उतर आते हैं, और हम उसको किस किस तरह से उसको सुनाते हैं फिर। और सुभान अल्लाह, फिर सोचा करें जब आपको पता चले ना कि मेरे बारे में किसी ने ऐसा कहा है और आपको बुरा लगे, फिर सोचा करें कि वो रब कितना सबर वाला है, कि वो देख रहा है, सुन रहा है, जानता है, वो देखता है ये बुतों के आगे सज्दा कर रहे हैं, वो देखता है मैं इनको खिलाता हूं और ये क्या कर रहे हैं, मैं इनको पिलाता हूँ और ये किधर जा जाके मान रहे हैं मन्नतें और किधर दुआएं करते हैं और किधर माथे टेकते हैं और किन के आगे हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, वो सब देखता है, जानता है, सुनता है। इसके बावजूद वो उनको रिस्क भी देता है, आफियत में भी रखा, उनको औलाद देता है, उनको आफियत देता है, उनको सेहत देता है, उनको दौलत देता है, उनको खाना पीना देता है, रिस्क के सामान उनके लिए करता है। आसमान गिर नहीं जाता उनपे, जमीन फट नहीं जाती उनके लिए, वरना अल्लाह चाहे तो एक कलमा कुन से वो मिट जाए, लेकिन देखो अल्लाह का सबर, वो जो हर चीज पर कादिर है। हमें तो कुदरत भी नहीं होती, फिर भी हम जितनी भी हमारे पास पावर होती है उसको ही हम बस कितना यूज करते, वो तो हर चीज पे कुदरत रखता है, तब भी नहीं ऐसा करता। वो हम किससे हम बदले लेते हैं, हम क्या हाल करते हैं किसी का जब हमें पता चल जाए कि इसने हमें कुछ कहा। अल्लाह से ज्यादा वाकई बुरी बातें सुन के सब्र करने वाला कोई नहीं। अल्लाह तू कामिल है, अल्लाह तेरी जात वाकई तारीफ के काबिल है। हमें देख लो क्या चीज है हम, वो मुहावरा ना पिद्दी और बिद्दी का शोरबा, वो हम क्या चीज है, और हमारी भूं फां देखें क्या है, वो हमारी अकड़े देखे क्या है, फिर हमें कोई कुछ कह के तो देखे। तो जब आप कभी सुने कि मेरे बारे में कोई एक बुरी बात होता है तो ये हदीस याद कर लीजिएगा, अल्लाह तू कितना सबर वाला, मुझे कितना सबर करना चाहिए। तो सब ताकत रख के सबर करता है, मैं तो वैसे ही कमजोर। बदी समावाति वल अर्ध, बदी है वो कोई चीज, पहले से कोई एग्जाम्पल, कोई नमूना, कोई पहले से कोई चीज इजाद नहीं हुई भी थी जिसको देख के उसने आसमानों जमीन बना लिए, कुछ भी नहीं था, वो तो इनिशिएटर था, ओरिजिनेटर था, अदम से वो वजूद में लेकर आया, कोई इनका सैंपल नहीं था, वो बनाने वाला आसमानों जमीन को। वाइजा कदवा अमरन فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ, उसकी तो कुदरत इतनी है, उसको क्या औलाद चाहिए, वो तो कौन कहता तो चीज हो जाती है, उसको किसी के सहारे नहीं चाहिए, उसको बेटे नहीं चाहिए कि उसके बाजू बने, वो तो कौन कलमा कहता है और चीज हो जाती है। उसने फरिश्तों को कलमा कुन से पैदा कर दिया, रूहों को कलमा कुन से पैदा फरमा दिया, हो जा और वो हो जाती है।